ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तम श्लोके
भगवत्युत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 21वां अध्याय महाराज पृथु द्वारा उपदेश श्लोक श्लोक संख्या 42। अच्छा ठीक है। यत्
ब्रह्मा
नित्यं
नित्यं
विरजं
विरजं
सनातनं
सनातनं
श्रद्धा
श्रद्धा
तपः
तपः
मंगल
मंगल
मौन
मौन
संयमैः
संयमैः
समाधिना
समाधिना
बिभ्रति
बिभ्रति
अर्थ
अर्थ
दृष्टये
दृष्टये
यत्र
यत्र
इदं
इदं
आदर्शे
आदर्शे
इव
इव
अवभासते
अवभासते।
यद् ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं
यद् ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं
श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमे
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 समाधिना बिभ्रतिहार्थ दृष्टये
समाधिना बिभ्रतिहार्थ दृष्टये
यत्रेदमादर्श इवाव भासते
यत्रेदमादर्श इवाव भासते
यद् ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं
यद् ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं
श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमैः
श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमैः
समाधिना बिभ्रतिहार्थ दृष्टये
समाधिना बिभ्रतिहार्थ दृष्टये
यत्रेदमादर्श इवाव भासते
यत्रेदमादर्श इवाव भासते
यद् ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं
ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं
श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमै
श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमै
समाधिना बिभ्रतिहार्थ दृष्टये
समाधिना बिभ्रतिहार्थ दृष्टये
यत्रेदमादर्श इवाव भासते
यत्रेदमादर्श इवाव भासते यद् ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनम् श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमे समाधिना बिभ्रतिहार्थ दृष्टये यत्रेदमादर्श इवाव भासते
यद् ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं
यद् ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं
श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमै
श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमै
समाधिना बिभ्रतिहार्थ दृष्टये
समाधिना बिभ्रतिहार्थ दृष्टये
यत्रेदमादर्श इवाव भासते
यत्रेदमादर्श इवाव भासते।
और तात्पर्य फिर यहाँ तक ये करा था ना, बहुत लंबा है इसके लिए कल भी हो सकता है।
शब्दार्थ
यत
जो
जो
ब्रह्मा
ब्राह्मण संस्कृति
ब्राह्मण संस्कृति
नित्यम
नित्यम
शाश्वत
रूप से
विरजम
निष्कलंक
सनातनम
सनातनम
अनादि
अनादि
श्रद्धा
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 तपः
तपः
तपस्या
तपस्या
मंगल
मंगल
शुभ
शुभ
मौन
मौन
मुख रहना संयमय मन तथा इंद्रियों को
वश में करते हुए
समाधिना
पूर्ण मनोयोग से
बिभ्रति
प्रकाशित करता है
जैसे उसने किया
अर्थ
वेदों का असली प्रयोजन
दृष्टये
प्राप्त करने के उद्देश्य से यत्र
जिसमें
इदम
यह सब
आदर्शे
दर्पण में
इव
सदृश
अवभासते
प्रकट होता है।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों का दिव्य स्थान शाश्वत रूप से बनाए रखा जाता है, क्योंकि वेदों के आदेशों को श्रद्धा तप शास्त्रीय निर्णय मन तथा इंद्रिय निग्रह एवं ध्यान के साथ स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार जीवन का वास्तविक लक्ष्य ठीक उसी तरह से प्रकाशमान हो उठता है जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में किसी का मुंह भली भांति प्रतिबिंबित होता है। तात्पर्य, पिछले श्लोक में बताया गया था कि एक जीवित ब्राह्मण को खिलाना अग्नि में आहुतियां डालने से अधिक प्रभावकारी है। अब इस श्लोक में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणत्व क्या है और ब्राह्मण कौन है। इस कलियुग में इस तथ्य का लाभ उठाया जा रहा है कि ब्राह्मण भोजन कराना यज्ञों के करने से श्रेयस्कर है, और इस तरह ऐसे लोग स्वयं को ब्राह्मण भोजन के अधिकारी बताने लगे हैं जो ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न हुए हैं, किंतु उनमें ब्राह्मणों के एक भी गुण नहीं रहते। ऐसे व्यक्तियों तथा असली ब्राह्मणों में अंतर करने के उद्देश्य से ही महाराज पृथु ब्राह्मण तथा ब्राह्मण संस्कृति का यथार्थ वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को प्रकाशहीन अग्नि की भांति बनकर अपनी स्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहिए। ब्राह्मण को वेदों के निर्णय की भली भांति जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि भगवद गीता में 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। वैदिक निर्णय या वेदांत ज्ञान कृष्ण ज्ञान है। यह तथ्य है कि जिस रूप में श्री कृष्ण है उसके जान लेने से मनुष्य पूर्ण ब्राह्मण हो जाता है, जैसा कि भगवद गीता में उल्लिखित है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। जो ब्राह्मण श्री कृष्ण को अच्छी तरह जान लेता है वह सदैव दिव्य स्थिति में रहता है। इसकी पुष्टि भी भगवद गीता के 14वें अध्याय 26वें श्लोक में हुई है, माम चयो व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग के परायण है और किसी स्थिति में उससे डिगता नहीं, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन करके ब्रह्मभूत हो जाता है। अतः भगवान कृष्ण का भक्त वास्तव में एक पूर्ण ब्राह्मण है। उसकी स्थिति दिव्य होती है क्योंकि वह बद्ध जीवन के चारों दोषों से मुक्त होता है। ये दोष है त्रुटि करना, मोहग्रस्त होना, धोखा देना तथा अपूर्ण इंद्रियों वाला होना। पूर्ण वैष्णव या कृष्ण भक्त सदैव दिव्य स्थिति में रहता है क्योंकि वह कृष्ण तथा उसके प्रतिनिधि के रूप में बोलता है। क्योंकि वैष्णव लोग श्री कृष्ण के ही स्वर में बोलते हैं, अतः वे जो कुछ भी कहते हैं वह चारों दोषों से रहित होता है। उदाहरणार्थ श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं का भक्त बने, उन्हीं को नमस्कार और उन्हीं की पूजा करें और अंत में उन्हीं की शरण में जाए। ये भक्ति कर्म दिव्य है और चारों दोषों से रहित है। अतः जो भी भगवान कृष्ण का एक अनिष्ट भक्त है और इस संप्रदाय का प्रचार श्री कृष्ण के आदेशों के ही अनुसार करता है वह विरजम होता है। अतः असली ब्राह्मण या वैष्णव वेदों के निर्णय पर या भगवान द्वारा दिए गए वैदिक ज्ञान पर निर्भर रहता है। केवल वैदिक ज्ञान से हम परम सत्य की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं, जो श्रीमद् भागवत के अनुसार तीन रूपों में प्रकट होता है, निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। यह ज्ञान सनातन काल से संपूर्ण माना जा रहा है और ब्राह्मण या वैष्णव संस्कृति इसी सिद्धांत पर आश्रित रही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वेदों का अध्ययन न केवल ज्ञानार्जन के लिए करे, वरन इस ज्ञान तथा इन कार्यकलापों को भगवान तथा वेदों के ही शब्दों में श्रद्धा सहित फैलाने के लिए करे।
ओम अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च गीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनुवाद दोहराइए। ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों का दिव्य स्थान शाश्वत रूप से बनाए रखा जाता है। क्योंकि वेदों के आदेशों को श्रद्धा तप शास्त्रीय निर्णय मन तथा इंद्रिय निग्रह एवं ध्यान के साथ स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार
जीवन का वास्तविक लक्ष्य
ठीक उसी तरह से प्रकाशमान हो उठता है जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में किसी का मुंह भली भांति प्रतिबिंबित होता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें पृथु महाराज यहाँ पर बतला रहे हैं। ब्राह्मण संस्कृति क्यों आवश्यक है समाज के लिए? सबसे पहले तो ये संक्षेप में चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण है कौन। भगवद गीता की परिभाषा कौन देंगे? श्लोक ब्राह्मण की परिभाषा, ब्राह्मण की का जो की पहचान क्या है? तो कितने गुण हो गए? 9 क्षत्रिय के 7, तो ब्राह्मण के 9 गुण कौन से? एक एक करके कौन बताएंगे? अभी पहला कौन सा है? क्षमा, मतलब
मन को नियंत्रित करना।
ठीक है, इंद्रियों का नियंत्रण, निग्रह, तपह मतलब तपस्या, शौचम स्वच्छता के नमो दमो तपस शौचम क्षांति क्ष 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 ने क्ष क्षांति मतलब
सरलता सरलता सरलता
सरलता सहनशीलता सहनशीलता क्षांति फिर आर्जवम
सरलता सरलता
ब्रजेश कृष्ण बता है ना
सत्यनिष्ठा
सरलता नहीं ये क्यों सरलता बार बार आ रहा है क्यों कुछ सरल हो इसलिए तो सत्यनिष्ठा ऑनेस्टी आर्जवम फिर ज्ञानम क्या है ज्ञान और विज्ञानम साक्षात्कार ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम
भगवान की श्रद्धा या शास्त्रों का
आस्था होना क्या लिखा है आस्तिक्यम
धार्मिकता
धार्मिकता अर्थात भगवान और भगवान के आदेशों के प्रति श्रद्धा होना आस्था होना आस्तिक और नास्तिक है ना आस्तिक कौन होता है जिसको भगवान और भगवान के वेद शास्त्रों में विश्वास होता है वो आस्तिक है और जो लोग वेदों को और भगवान को नहीं मानते वो नास्तिक कोई कहे कि मैं भगवान को मानता हूँ परंतु वेदों को नहीं मानता हूँ तो फिर वो भी नास्तिक ही है क्योंकि वेदों के बिना भगवान को नहीं जाना जाता है तो खैर ये 9 लक्षण हैं ब्राह्मणों के तो ये श्लोक बिना देखे और कौन बता सकते हैं कौन बताएंगे हाँ
शमो दम तपस्तोच शांति आर्जमयोच
आर्जवम
शांति आर्जव ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम
तो ब्रह्म कर्म स्वभावजम तो ये ब्राह्मणों के कर्म हैं जिनसे कि वो जाने जाते हैं ब्रह्म कर्म स्वभाव उनका स्वभाव ऐसे होता है तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ये नहीं बता रहे हैं कि जिसने जनेऊ पहना है ना इसने ब्राह्मण कुल में घर में जन्म लिया है वो ब्राह्मण है ऐसा नहीं बोलते भगवान कृष्ण ब्रह्म कर्म स्वभाव जम जम मतलब जहाँ से उत्पन्न होता है जन्म लेता है तो जिसके चरित्र में जिसके मानसिकता में जिनके व्यवहार में ये सारे गुण आदि देखे जाते हैं वो ब्राह्मण है चाहे उसका कुल कैसे भी क्यों ना हो यदि उसके अंदर ये सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो वो ब्राह्मण कहलाता है भले उसका जन्म तथाकथित शूद्र परिवार में क्यों ना हुआ हो और यदि ब्राह्मण कुल में भी उसका जन्म हुआ हो परंतु वो इन लक्षणों को प्रकट नहीं करता है तो उसे हमें ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए उसे क्या कहते हैं
ब्रह्म बंधु
मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है तो इसके लिए उदाहरण कौन दे सकते हैं कोई एक साधारण जैसे डॉक्टर का उदाहरण दे दो कोई डॉक्टर के कुल में कोई बच्चा जन्म लेता है फिर
तो वो डॉक्टर नहीं बनता जब तक वो योग्यता को प्राप्त नहीं करता
केवल कोई बच्चा डॉक्टर के घर में पैदा हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद वो माँ के घर से आते आते ही वो इंजेक्शन हर हाथ में लेकर आया है और स्टेथोस्कोप वगैरह सब साथ में लेकर ही आया ऐसा नहीं है आगे चल के हो सकता है कि वो डॉक्टर ना बने कुछ और बन जाए किसान बन जाए कोई और वकील बन जाए कुछ भी हो तो डॉक्टर के घर में भले कोई बच्चा जन्म ले परंतु जब तक वो पढ़ाई करके डॉक्टरी ना पढ़े और फिर पास ना हो तब तक वो डॉक्टर नहीं कहलाता है केवल डॉक्टर के घर में जन्म लेने से वो व्यक्ति अपने आप नहीं बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई व्यक्ति अपने आप सीधा ब्राह्मण नहीं बन जाता। जब ये लक्षण उसके अंदर प्रकट होते हैं, जब उसको वो संस्कार दिए जाते हैं, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके अंदर से ये जो सारे गुण हैं ये दिखाई पड़ते हैं, तब उसको ब्राह्मण मानते हैं। तो फिर जो बच्चा डॉक्टर के घर में लेता है, जन्म लेता है, उसको कोई फायदा है कि नहीं है? डॉक्टर बनने की दृष्टि से क्या फायदा है?
वो देखते कि माता पिता डॉक्टर है और उसको पहले से शुरुआत से ही उनको थोड़ा बहुत समझ में आता है कि कैसे करते हैं।
जब कोई बच्चा माता डॉक्टर पिता के घर में जन्म लेता है तो भले वो इस जन्म के कारण अपने आप डॉक्टर न बन जाए, फिर भी एक वातावरण इस प्रकार का रहता है कि उसे लगता है डॉक्टरी सब जगह दिखाई दे रहे, तो उसको भी प्रेरणा मिलती है, मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए। और घर में भी डॉक्टरी की बातचीत होती है, रुग्ण लोग आते हैं, मरीज सब आते हैं, तो एक प्रोत्साहन मिल जाता है, एक झुकाव अपने आप ही हो जाता है। और साथ साथ माता पिता के जो खून में बह रहा है ना, तो हो सकता है बच्चे के इसमें भी आ जाए। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से लाभ ये होता है कि एक ब्राह्मण संस्कृति होती है परिवार में। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, परंतु कम से कम पहले के समय में हुआ करता था, ब्राह्मणों की संस्कृति हुआ करती थी जिसमें पाला पोसा जाता था बच्चा, फिर उसको आसानी से ब्राह्मण संस्कृति को स्वीकार करने में सहायता मिलती थी, तो फिर वो ब्राह्मण बन सकता था, उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता था। तो ये ब्राह्मण संस्कृति बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी इसके बारे में बार बार कहते हैं और श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख पाया जाता है। तो यहाँ पृथु महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों का दिव्य स्थान शाश्वत रूप से बनाए रखा जाता है, ब्राह्मणों को एक दिव्य स्थान दिया जाता है। क्यों ऐसे? क्योंकि उसका कुल बहुत ऊंचा है, तथा कथित ऊंचा है, क्या इसके लिए? नहीं, क्योंकि सच्चे ब्राह्मणों के अंदर ऐसे गुण होते हैं। तो वास्तव में सम्मान किसको दिया जाता है? गुणों को दिया जाता है सम्मान। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि यदि हम किसी मायावादी सन्यासी को भी देखते हैं ना, तो हमें प्रणाम करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने मायावादियों के विरोध में कितना कुछ कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कितना कुछ कहा, परंतु प्रभुपाद जी ने कहा कि जब हम किसी मायावादी सन्यासी को भी देखते हैं तो हमें प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जब ये मायावादी है, भगवान के चरण कमलों में अपराधी है, फिर भी हमें क्यों करना चाहिए? महाप्रभु कहते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी, ऐसे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं। तो ऐसा होते हुए भी हम उससे दूर जाने के बजाय दंडवत प्रणाम कर रहे हैं उनको, ऐसे कैसे हो सकता है? वो हम जब मायावादी सन्यासी को भी प्रणाम करते हैं तो वैराग्य के गुण या लक्षण को देखकर हम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सन्यास आश्रम है ये भी वैदिक सभ्यता के अनुसार है, तो इसलिए उसके वैराग्य को देखकर हम प्रणाम करते हैं, ना कि उसकी दार्शनिक धारणा को कि ये अपने आप को भगवान मानता है या कुछ। तो मुझे याद है जब मैंने सन्यास लिया था तो एक सन्यासी वरिष्ठ वो मेरे पास आए कि एक रहस्य बताऊं। बोला हाँ बताइए। कहा जब लोग आपको प्रणाम करेंगे ना, वो आज तक जो कर रहे थे वो आपके गुणों के लिए कर रहे थे, लेकिन आज से आगे जो करेंगे ये दंडे को करेंगे। तो मतलब कि व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को कर रहे हैं, प्रणाम वास्तव में गुण को जा रहे हैं, लक्षण को जा रहे हैं, स्थान को जा रहा है। जैसे वो एक छोटी सी कहानी है ना कि एक बार एक व्यक्ति एक भगवान के विग्रह को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जा रहा था, तो शिल्पकार के यहाँ से मूर्ति या भगवान या मंदिर से कहीं दूसरी जगह ले जाना था विग्रह को, तो विग्रह भारी था तो अकेले उठा के ले जाना संभव नहीं था। तो उसने क्या किया, घोड़ा तो नहीं था तो गधा था उसके पास, तो गधे के पीठ के ऊपर उसको बिठाया, विग्रह को बिठाया, खड़ा करवाया किसी तरह से उसको करके, और फिर वो साथ साथ चलता गया। तो जैसे लोग भगवान के विग्रह को देखने लगे तुरंत प्रणाम करने लगे, लेकिन गधे ने क्या सोचा, मुझे प्रणाम कर रहे पर तो वास्तव में किसको कर रहे थे, भगवान के विग्रह को कर रहे थे। तो उसी तरह से हम एक दूसरे को भी प्रणाम करते हैं ना, वांछा कल्प तरु व्यश्च इत्यादि बोल के करते हैं, तो ये भी हम मान के करते हैं कि ये वैष्णव हैं इसलिए हम इनको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन और गहराई से देखा जाए तो हम इसलिए इनको प्रणाम करते हैं क्योंकि इनके अंदर भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान हैं, और वास्तव में परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने दंडवत किया किसी को, प्रणाम किया और कहा कि आपके अंदर परमात्मा को करना आपको नहीं करना, चलो ऐसे नहीं, दोनों को कर रहे हैं क्योंकि वो भी परमात्मा का दास है ना, इसलिए उनको दास को भी करते हैं। तो इस तरह से ये एक गुण और लक्षणों की जो प्रधानता है ये मुख्य वस्तु है। किसी व्यक्ति विशेष को सम्मान दिया जाता है तो गुणों के लिए दिया जाता है, हर चीज का आधार गुण है। भौतिक जगत में भी आप देखेंगे किन लोगों को सम्मान मिलता है ज्यादा अन्यों के तुलना में, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है,
पद
जो ऊंचे पद पे हैं, कोई बड़ा मंत्री है, राष्ट्रपति है, राजा है, क्यों, क्योंकि वो पद पे है, तो किसको सम्मान दे रहे हैं, पद को दे रहे हैं, और किसको देते हैं, जो बहुत धनी व्यक्ति है, अरे ये करोड़पति आ गया, बहुत बड़ा करोड़पति है, तो उसका धनवान होने के गुण के प्रति दे रहे हैं। यदि उसका धन सब चोरी हो जाए, वो सड़क पे आ जाए, तो कितने लोग सम्मान करेंगे उसका, नहीं करेंगे, जब तक है सम्मान करते। और कौन, जिसके पास ज्ञान बहुत है तो किसी भी सम्मान करते हैं उसको, क्योंकि उसके पास ये गुण है, ज्ञान का गुण है। कोई बहुत सुंदर है तो बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं वो, तो सौंदर्य को हम मानकर सम्मान दे रहे हैं कि इसके पास सौंदर्य का गुण है, बुद्धि या ज्ञान का गुण है, धन ये एक लक्षण है इसके पास। तो व्यक्ति विशेष को नहीं परंतु गुण विशेष का सम्मान हम करते हैं, गुणों की प्रधानता है। इसलिए भगवान के जो गुण होते हैं उनके कारण वो भगवान जाने जाते हैं ना, भगवान के गुण ही ऐसे हैं जिनसे कि वो सर्व आकर्षक होते हैं। कृष्ण शब्द का तात्पर्य क्या है, कुछ लोग बता सकते हैं कि कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, कृषि भूवाचक शब्द नष्ट निर्वृतिर, नहीं पता, अयो ये तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जानना चाहिए। बताओ ब्रजेश कृष्ण, उसमें से कृषि भूवाचक है शब्द,
कृषिर्भूवाचक शब्दो नश्च निर्वृतिवाचक तयोरख्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते।
क्या मतलब इसका?
कृष शब्द भगवान के अस्तित्व का आकर्षक स्वरूप है और न का अर्थ है
कृष क्या है?
आकर्षक स्वरूप,
भगवान का आकर्षक स्वरूप। फिर
न का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद,
निर्वृत्ति आध्यात्मिक आनंद।
कृष धातु न प्रत्यय से मिलकर कृष्ण बनाता है जिसका अर्थ है परम सत्य।
कृष्ण इति अभिधीयते, तो कृष और न इन दो अक्षरों को जोड़ के कृष्ण बन जाता है शब्द, जो कि भगवान परम सत्य का संबोधन है। तो ये क्यों है? क्योंकि कृष्ण मतलब क्या है? सर्व आकर्षक, और जिससे आनंद मिलता है, जो आनंद के उद्गम है, जिनके प्रति आकर्षित होकर व्यक्ति को दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो क्यों कृष्ण? क्योंकि ये आकर्षक गुण है, सर्व आकर्षक। इसलिए कृष्ण का अर्थ प्रभुपाद जी बताया करते थे सर्व आकर्षक है। सर्व आकर्षक होने का क्या तात्पर्य है, अभिप्राय क्या है? कि उनके अंदर ऐसे समस्त प्रकार के आकर्षक गुण विद्यमान है और असीमित मात्रा में। तो भगवान श्री कृष्ण के कितने गुणों का उल्लेख चैतन्य महाप्रभु ने किया है या रूप गोस्वामी ने किया है? 64 गुण। और जीवों के गुण कितने हैं? 50। सारे 50 के 50। बिंदु बिंदु तया क्वचित, अर्थात कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। किसी जीव में कभी कभी ये सारे के सारे 50 को दिखाई देंगे ऐसे नहीं है। क्वचित कभी किसी में दिखाई पड़े तो कभी नहीं दिखाई पड़े, कभी कोई गुण दिखाई पड़ेगा कभी नहीं दिखाई पड़ेगा, और जब दिखाई भी पड़ता है बिंदु बिंदु तया बिंदु मात्रा में अणु मात्रा में ही दिखाई पड़ेगा। परंतु शिवजी जैसे महान देवता हैं, उनके अंदर ये 50 गुण बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में। और इसके अतिरिक्त उनके अंदर भी ऐसे 5 गुण हैं जो जीवों के अंदर नहीं हैं। और फिर भगवान नारायण, उनके अंदर ये 55 गुण जो शिवजी और ब्रह्मा जी के अंदर होते हैं वो भी अधिक मात्रा में है। शिवजी और ब्रह्मा जी में जितने हैं उनसे कहीं ज़्यादा परिपूर्णता में भगवान नारायण के पास है। और शिवजी ब्रह्मा जी के अधिक और 5 गुण हैं जो शिवजी ब्रह्मा जी में नहीं हैं। तो भगवान कृष्ण के पास और अतिरिक्त 4 गुण हैं जो भगवान नारायण में भी नहीं है। और ये 60 गुण जो भगवान नारायण के हैं वो भगवान कृष्ण में भी हैं, पूर्णतया हैं, नारायण में भी हैं और कृष्ण में भी हैं ये 60 गुण। परंतु नारायण के ये 60 गुण और कृष्ण के ये 60 गुण दोनों परिपूर्णता में हैं, परंतु अंतर क्या है दोनों में? नहीं, 60 के, अभी 64 की बात नहीं कर रहा हूँ, 60 में दोनों परिपूर्ण है, नारायण और कृष्ण। इमे किल अद्भुत, इमे किल अद्भुत, अद्भुत रूप में ये गुण कृष्ण में विद्यमान है, नारायण से भी अधिक। यद्यपि नारायण में भी पूर्णतया ये गुण रहते हैं, परंतु भगवान कृष्ण में और अद्भुत रूप से प्रकट होते हैं। यद्यपि दोनों भगवान ही हैं, नारायण और कृष्ण दोनों परिपूर्ण पूर्ण भगवान की अवस्था में हैं, फिर भी जो ये 60 गुण कृष्ण के अंदर हैं वो और भी अद्भुत रूप से प्रकट होते हैं, और नारायण के अतिरिक्त भगवान कृष्ण के चार गुण हैं जो कि अन्यों में किसी में नहीं है। तो इस प्रकार से गुणों को देखिए तो भगवान न केवल गुणों, लेकिन गुण केवल मात्रा में नहीं, केवल कौन से गुण हैं और कितनी मात्रा में है, लेकिन कितने अद्भुत तरह से ये गुण प्रकट होते हैं। तो तीन चीजें हैं, कितने गुण हैं, ठीक है, दूसरा क्या है,
मात्रा,
किस मात्रा में है वो गुण, और तीसरा कितने अद्भुत रूप से प्रकट हैं। इसलिए कृष्ण का तात्पर्य है सर्व आकर्षक, क्योंकि उनके अंदर अनगिनत असंख्य दिव्य गुण हैं, असीमित मात्रा में हैं और अद्भुत रूप से प्रकट हैं। इसलिए वो परम सत्य कहलाते हैं। परम सत्य का ऐसा कोई हल्का तात्पर्य नहीं है कि कोई भी भगवान हो गए। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं ट्रेन में सफर कर रहा था तो एक व्यक्ति मुझे मिले, वो मायावाद दर्शन बोल रहे थे, हम सब भगवान हैं, ये उनको बता रहे थे भगवान शब्द क्या है, कुछ समझना चाहिए पहले, इतना हल्का नहीं है ये परम सत्य भगवान ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। तो मैंने प्रभुपाद के बात को दोहराया उनको कि हमारे संस्थापक आचार्य बताया करते थे कि ऐसे तथा कथित भगवान के अवतार होते हैं, पर थोड़ा सा दांत में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ठीक करने के लिए, किस प्रकार के भगवान हुए वो। तो ऐसे लोग भगवान का तात्पर्य नहीं जानते शब्द का। भगवान शब्द को, परम सत्य को अनेक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जा सकता है, परंतु ये एक मूल है। ये सब छोड़े कि भगवान हर चीज के उद्गम हैं, ये सब दार्शनिक परिभाषाएं हैं, परंतु रस के दृष्टि से परिभाषा देखनी हो तो वो सर्व आकर्षक है, अखिल रसामृत मूर्ति ही। आकर्षण मतलब एक रस ना, कोई सुंदर व्यक्ति दिखता है, अरे चकाचौंध कितना सुंदर है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति दिखता है, अरे कितना बुद्धिमान है। और दूसरी ओर भी विकृत रूप में भी, अरे कितना दुष्ट है कितना मूर्ख है। एक रस हो, चाहे वो एक विकृत रूप में हो या शुद्ध रूप में हो, परंतु सबसे शुद्ध रूप जब भगवान को हम, भगवान का विचार करते हैं, तो ये सारे दिव्य गुण जो हैं इतने अद्भुत रूप से उनमें प्रकट होते हैं, इसलिए वो सर्व आकर्षक बन जाते हैं। यह है परम सत्य का तात्पर्य। तो यदि भगवान सर्व आकर्षक हैं तो हम क्यों नहीं आकर्षित हो रहे उनके प्रति? इसका मतलब कि भगवान सर्व आकर्षक नहीं है, यही है ना, सही? यदि सर्व आकर्षक, परिभाषा ही हमने दी है भगवान की कि सर्व आकर्षक हैं, इतने आकर्षक हैं कि कोई आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता, तो हम फिर क्यों नहीं आकर्षित हैं?
हम भी आकर्षित हैं चादर भगवान के दूसरे रूप से, मतलब भगवान के अन्य शक्तियों से, उनके मूल रूप से आकर्षित नहीं होकर।
क्यों नहीं? क्यों? भगवान सर्व आकर्षक है तो होना चाहिए ना।
भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न है, माया शक्ति जिससे आकर्षित है हम, वो भगवान की ही शक्ति है।
ठीक है, और थोड़ा स्पष्टता से और कौन बताएंगे? आप प्रश्न समझे ना, प्रश्न क्या है?
भगवान सर्व आकर्षक है तो हम क्यों उनको आकर्षित नहीं,
हम उनकी प्रति आकर्षित क्यों नहीं हो रहे? तो फिर कोई कह सकता है इसका मतलब है कि भगवान सर्व आकर्षक नहीं है, तो इसका खंडन कीजिए। हाँ,
जिस प्रकार बादल होते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देता, तो हमें सूर्य से आकर्षण है बट बादल के कारण वो दिखाई नहीं पड़ता, तो वैसे ही अभी अज्ञान के कारण जो है वो सूर्य के साथ आदान प्रदान नहीं हो पा रहा
है। परंतु सर्व आकर्षक का तात्पर्य क्या है? सबको आकर्षित करते हैं, तो बादल हो कुछ भी हो, तो बादल सूरज से ज्यादा शक्तिशाली है।
अट्रैक्टिव बाय सर्टेन फीचर्स ऑफ कृष्णा,
सरल उत्तर, हाँ हरे राम प्रभु।
भगवान के लिए आकर्षण है बहिरंग शक्ति,
लेकिन भगवान का सुंदर रूप है इतना सब लोग क्यों नहीं आकर्षित होते? पता है, एक छोटी सी बात बताऊं, भक्ति तीर्थ महाराज थे, वो हमारे संस्था के सन्यासी थे, अभी नहीं रहे प्रकट रूप में, तो वो बताया करते थे कि जब वो पुस्तक वितरण करने जाते थे तो क्या करते थे, पुस्तक ले जाते थे उन लोगों को दिखाने के लिए, और सबसे पहले जिस व्यक्ति को पुस्तक दिखा रहे थे उसका चेहरा देखते थे ख्याल से, सीधा एकदम से कृष्ण का चित्र उनको दिखाते थे, और यदि उनके मुंह में थोड़ा आश्चर्य होगा, अच्छी तरह से हो गया, तो समझते थे कि इनको, इनसे बात करेंगे, यदि चेहरे पे देखा कि अरे क्या है, तो वो चले जाते थे, क्योंकि समय क्यों बर्बाद करना इनके साथ, समय कम होता है ना। तो सब लोग आकर्षित नहीं होते कृष्ण के सुंदर चित्र को देखने के बाद भी, थोड़े लोग अरे कह के दूर चले जाते, क्यों? नहीं, सब आपने जितने भी बातें सब ने कही वो सही है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का सर्व आकर्षण सर्वशक्तिमान है, अर्थात भगवान इतने आकर्षक हैं कि कोई भी उनके तरह उनकी प्रति आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकता, किसी के अंदर ही शक्ति नहीं है कि वो भगवान की ओर आकर्षित न हो। एक ही व्यक्ति है जो हमें भगवान के प्रति आकर्षित होने से रोक ले, कौन है वो?
हम
स्वयं कृष्ण। और किसी की ऐसी शक्ति नहीं है कि हमको भगवान से आकर्षित न होने दें, और इसलिए भगवान अपनी माया शक्ति को सामने लाते हैं, क्योंकि उन्हीं की इतनी शक्ति है, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, तो ये भगवान की दैवी शक्ति है, तो भगवान की ही इतनी शक्ति है कि वो हमें उनसे आकर्षित न होने को मैं समर्थ हूं। तो यदि भगवान न होते तो और कोई हमें उनसे आकर्षित हुए बिना नहीं रह रोक सकते, निस्सहाय होकर हम आकर्षित हो ही जाएंगे, परंतु भगवान ने ही अपनी शक्ति को ऐसे बनाया है कि लोग आकर्षित नहीं होते हैं। तो फिर अगला प्रश्न क्या आता है,
क्यों
ऐसे है ये के ये के बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कन्नड़ में, एक मतलब क्यों, क्यों ऐसे?
वो हमारा जो स्वतंत्र में स्वतंत्रता में
हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, क्योंकि भगवान चाहते हैं हमारे ऊपर जबरदस्ती न करें वो, तो भगवान चाहते हैं कि स्वेच्छा से हम उनके प्रति प्रेम करें, जबरदस्ती नहीं करवाना चाहते हैं, इसलिए वो छूट देते हैं जीव को। और जब जीव भगवान को भूलना चाहता है, कृष्ण कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तरे झपटिया धरे, कृष्ण भूलिया, कृष्ण को भूलकर क्या होता है, जीव भोगवांछा करे, तो भोग क्या करते, भोग की इच्छा करता है, फिर जैसे ही ये होता है तो क्या होता है, निकटस्थ पास में खड़े रहने के लिए माया झपट के पकड़ लेती है उसको, है कि नहीं? क्या हुआ? ठीक है,
वो कुछ डिवोटीज जो सेवा के लिए जाना चाहते हैं वो लोग,
हाँ सही नहीं, अवश्य,
क्योंकि तालाब के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं,
सर्व आकर्षक सेवा, अरे बहुत निकलो। तो ये उत्तर दे के जाओ फिर, भगवान के प्रति हम लोग क्यों नहीं आकर, किसकी शक्ति है कि वो हमको रोके, स्वयं भगवान, यदि भगवान नहीं होते, भगवान ने अपनी शक्ति का प्रयोग ना किया होता हमको उनसे दूर रखने के लिए, तो और कोई उपाय हमारे पास रहता ही नहीं, हम आकर्षित हो ही जाते क्योंकि वो सर्व आकर्षक है। केवल भगवान में ही ये क्षमता है कि वो हमको आकर्षित हुए बिना रोके। और क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें हमारी स्वतंत्रता को, छोटी छोटी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हैं, ताकि हम स्वेच्छा से उनको प्रेम करें। जब प्रेम करने की इच्छा रखेंगे तब भगवान वो पर्दा निकाल लेंगे और फिर वो सर्व आकर्षण, वो आकर्षण जो है स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। तो अभी आप जल भी सर्व आकर्षक है। जहां भी जल है कितना अच्छा लगता है, नदी के पास जाओ बैठो, घंटों बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से गुण, गुणों की प्रधानता है। तो यहाँ पर भी ब्राह्मण संस्कृति और ब्राह्मण, ब्राह्मण संस्कृति को क्यों महत्व दिया जाता है? क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों की प्रधानता है। ब्राह्मणों की प्रधानता क्यों है? क्योंकि उनके अंदर गुण ही ऐसे हैं। ये गुण कौन से हैं? क्योंकि वेदों के आदेशों को श्रद्धा, तप, शास्त्रीय निर्णय, मन तथा इंद्रिय निग्रह एवं ध्यान के साथ स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार से गुणों का महत्व होने के कारण जहां हम गुण देखते हैं वहां आकर्षित हो जाते हैं। तो सच्चे ब्राह्मणों को जब देखते हैं हम आकर्षित हो जाते हैं। और स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण के गुण ऐसे होते हैं कि व्यक्ति के हृदय में एक सम्मान उत्पन्न होता है, नहीं? ये तपस्वी है, ये ज्ञानी है, करुणामयी है इत्यादि। तो इसकी वजह से, और क्योंकि तात्पर्य आधा ही पढ़ा है और अगला जो आधा भाग है उसमें श्लोक के दूसरे भाग की चर्चा है, तो दूसरे भाग में जो लिखी है उसकी चर्चा हम कल करेंगे सुबह को। इसी श्लोक की चर्चा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि लंबा तात्पर्य है और आधा ही पढ़ा है आज, पढ़ा गया है। ठीक है, कोई प्रश्न आदि है किसी के?
कृष्ण सर्व आकर्षक है, हम उनको आकर्षण क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि कृष्ण ही स्वयं को आकर्षण को देता है उनका शक्ति के द्वारा, क्योंकि वो सौतर्य था कि हमारा जो स्वतंत्रता है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। तो अभी वो कृष्ण का जो आकर्षण निकालने के लिए हमारा स्वतंत्रता से ही हम लोग को अभी कृष्ण को देखना है।
इच्छा करना होगा हमें। जब हम इच्छा करते हैं कि मुझे कृष्ण के पास जाना है, यद्यपि हमारे हृदय में अभी आकर्षण स्वाभाविक रूप से नहीं होता है, फिर भी भगवान वो अवसर प्रदान करते हैं। कैसे? भक्तों के संग में ले जाते हैं हमें। भक्तों के संग में आके फिर क्या होता है, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति आदि आदि, ऐसे आगे आगे चल के फिर वो आकर्षण बढ़ते रहता है। तो जैसे एक लोहे का टुकड़ा होता है, उसमें जंग पकड़ जाता है, तो फिर वो लोहे का टुकड़ा एक लोह चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। परंतु जब वो जंग निकाला जाता है घिस घिस के, हाँ, फाइलिंग वगैरह करके उसको निकाला जाता है, तब जिस हद तक वो जंग निकाला गया है उस लोहे के टुकड़े से, उस हद तक उसका जो स्वाभाविक गुण है वो प्रकट होने लगेगा। स्वाभाविक गुण क्या है? कि लोह चुंबक से वो आकर्षित हो जाए। तो इससे वो जंग पकड़ा हुआ है हमारे चित्त के ऊपर, तो हरि नाम के द्वारा उसका मार्जन कर रहे हैं। और जैसे जैसे मार्जन होता है वैसे वैसे जो असली गुण है, मूल जो हमारा गुण है वो प्रकट होने लगता है। वो क्या है? सर्व आकर्षक श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होना। ठीक है, हर्षल।
महाराज, जीव का इच्छा शक्ति और कृष्ण का सर्व आकर्षक गुण, भगवान कृष्ण का सर्व आकर्षक गुण, इन दोनों में से सबसे बलवान चीज क्या है?
कृष्ण के सर्व आकर्षक गुण और जीव के
इच्छा शक्ति
में सबसे बलवान कौन सा है? निर्भर करता है कि आप तत्व की बात कर रहे हैं या रस की बात कर रहे हैं। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण सर्वशक्तिमान है, इसलिए उनसे ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है, तो वो जो कहते हैं वही होगा, सृष्टि का सृजन होगा, पालन होगा, संहार होगा, इतने सारे कोटि कोटि अनगिनत जीवों को कितने सारे योनियां मिल जाएंगी, एक के बाद एक, वो ऐसे भगवान की शक्ति ही प्रधान है। परंतु रस के दृष्टि से जीव की शक्ति ज्यादा शक्तिशाली है, जब वो जीव उस स्तर तक प्रेम के पहुंच जाता है, बद्ध अवस्था में नहीं, कच्चे भक्ति के अवस्था में नहीं, जब वो एक नित्य सिद्ध बन जाता है, साधना सिद्ध होकर फिर भगवान के नित्य सिद्ध भक्तों के साथ रहता है, उसकी इतनी कृष्ण प्रेम की अवस्था तक पहुंच जाता है, तो फिर भगवान उसके चंगुल में फंस जाते हैं। इसलिए भक्ति के 6 लक्षण हैं, ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है। 6ठा लक्षण कौन सा है? श्री कृष्ण आकर्षणी। वैसे श्री कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, परंतु भक्ति श्री कृष्ण को आकर्षित करती है, तो यहाँ पर भी गुण की प्रधानता है। कृष्ण भक्त से नहीं आकर्षित होते, भक्त के भक्ति से आकर्षित होते हैं। जैसे दामोदर लीला में श्री कृष्ण माता यशोदा से नहीं बंधे गए, रस्सी से नहीं बंधे गए, माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम से बंधे गए, फिर भी हम यहीं पर देख रहे हैं वही बात, गुण। तो जब कोई कृष्ण प्रेमी होता है तो भगवान उसके हाथ में कठपुतली बन जाते हैं, तो भगवान की सर्वशक्तिमत्ता वो खत्म हो जाती है। वृंदावन में कोई परवाह नहीं करता, तुम हो सकते हो सर्वशक्तिमान, वो दूसरे जगह जाओ, तो यहाँ पे तुम्हारा ये सब रुबाब नहीं चलेगा, यहाँ पे हम जो कहते हैं ये चलेगा, है ना। जैसे भले राजा भी हो, बहुत शासन वगैरह करता हो, सब उसके नाम को सुनकर भी डरते हो, लेकिन जब घर में लौटता है तो क्या होता है, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान तात्विक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से सर्वशक्तिमान है, तो उनका जो गुण है सर्वाकर्षक और इत्यादि, ये महत्व का होता है। परंतु जब शुद्ध प्रेम में, फिर जीव की शक्ति भी भगवान को नियंत्रित कर सकती है, तो भगवान भी भक्तों के प्रति आकर्षित होते हैं, भक्त भी भगवान के प्रति आकर्षित।
जीव का इच्छा शक्ति अगर कमजोर है भगवान के सर्व आकर्षक गुण के सामने, तो महाराज फिर जीव का इच्छा होने के बाद कि मुझे सर्व आकर्षक कृष्ण से आकर्षित नहीं होना है, और फिर सर्व आकर्षक कृष्ण बीच में पर्दा डाल देते हैं, वो कैसे संभव हो सकता है?
क्योंकि वो भगवान का प्रेम है, भगवान चाहते हैं। यदि भगवान कहते कि नहीं, मैं उसको मेरे से आकर्षित जबरदस्ती करवाऊंगा ही, तो फिर हम आकर्षित हो ही जाते हैं, परंतु भगवान ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रेम का सार है स्वतंत्रता, आधार, सार नहीं आधार, क्योंकि स्वतंत्रता नहीं होगी, जबरदस्ती प्रेम थोड़ी हो सकता है, बंदूक लगा के क्यों बोल सकते हैं प्रेम करो मुझसे, ऐसे तो नहीं होगा ना। ठीक है, परंतु आकर्षण जो है ये परस्पर दोनों के बीच में होता है। भगवान अपने भक्तों के गुण से इतने आकर्षित हो जाते हैं, इतने ऋणी बन जाते हैं, अपने आप के हवाले का, वो अपने भक्तों के हवाले अपने आप को कर देते हैं, और ज्यादा नहीं लगता भगवान को खरीदने के लिए। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी दल मात्रेण, तुलसी दल अर्पण किया किसी ने, जलस्य चुलुकेण वा गंगा जल यमुना जल, थोड़ा सा इतना सा जल अर्पण किया, भक्तेभ्यः भक्तों के द्वारा जब किया, भक्ति भाव से उन्होंने किया, विक्रीणिते स्वम आत्मानम, कृष्ण कहते मैं अपने आप को बेच डालता हूँ, उस भक्त के हवाले कर देता हूँ मैं, विक्रीणिते विकुंठाक्तत् स्वतला, भक्तेभ्यो भक्तवत्सल है, क्योंकि वो भक्तवत्सल है इसीलिए। लेकिन भौतिक चीजें जितने भी मात्रा में हमारे पास हो उनसे खरीद नहीं पाएंगे भगवान, लेकिन लेश मात्र प्रेम भी हो उससे भगवान आकर्षित होते हैं। तो ये फिलॉसफी है ना दर्शन, ये प्रेम के स्तर में फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, फिर वहां ये भगवत गीता ये वो सब नहीं चलता है वहां। प्रेम आध्यात्मिक जगत प्रेम की दुनिया है, वो अपने स्तर पे सब वहाँ चलता है, वहाँ का जो आदान प्रदान है, वहाँ का जो सब कुछ है वो अलग ही है, निराला अलौकिक, अलौकिक ही नहीं वैकुंठ से भी भिन्न है, इसलिए वृंदावन की विशेषता है। किसी ने हाथ ऊपर किया था,
साधु संघ और बद्ध स्थिति, जो
साधु संघ और
अभी बद्ध स्थिति में है,
बद्ध स्थिति
कृपा से वो साधु संघ में आ रहे, तो अभी इसमें दो वर्ड जो है वो एक इंस्पायरिंग और दूसरा इंपोजिंग। साधु संघ में आने के बाद वो हमको इंस्पायर करते हैं,
प्रेरणा देते हैं,
या हम बड़ो उत्पादिता श्रद्धा उनको हम लोग कभी कभी हाँ जपा करो, थोड़ा भक्ति करो, चार नियम करो, तो सेवा करो, ऐसा हम लोग
वो भी एक तरह की प्रेरणा है, हमको प्रेरणा देते हैं करो, परंतु साथ साथ हम ये भी देखना है कि जो व्यक्ति भक्ति में आया है स्वयं वो अपने आप को भक्तों के हवाले करता है, इसलिए वो सदाचार या शिष्टाचार या संयम का पालन करता है, इसीलिए उसको शिष्य बोलते हैं ना। शिष्य मतलब क्या है, शस धातु से आता, तो जो शासन के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है, स्वीकार करता है अपनी इच्छा से कि मैं नियमों का पालन करूंगा, जैसे कोई किसी दफ्तर में काम करने जाता है तो वो मान लेता है कि यहाँ का जो एक शिष्टाचार है उसका पालन मैं करूंगा, अपने आप से उसने स्वेच्छा से निर्णय लिया है, और एक बार निर्णय लिया उस दफ्तर में गया तो वहाँ के नियमों का पालन उसे करना चाहिए। एक बार किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से भक्ति को स्वीकार कर लिया है, फिर उसे चाहिए कि वो वहाँ के नियमों का पालन करे। यदि कोई किसी ने अभी दफ्तर में जाना नहीं जाना ये है तो कोई को प्रेरणा कर से दे सकते हैं, चलो जाओ जाओ जाओ, ये भक्तों की करुणा होती है। मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिक नहीं बनता,
परंतु वातावरण अगर मिले तो पॉसिबिलिटी है कि
हाँ, उस फिर उसको लिए लाभ होता है।
तो महाराज अभी दोनों भी बिंदु है, जन्म होना और वातावरण का होना, ये एक मतलब कोई भी कुछ किसी भी वर्ण की प्राप्ति करेगा उसमें मूलभूत माने जा सकते हैं, तो परंतु तात्पर्य से ऐसा पता चलता है कि जन्म के अधिकार के ऊपर ही वर्ण की प्राप्ति को खंडन किया जाता है, कि मतलब वो लोग ऐसे अगर गुण दर्शाते नहीं है तो, पर अगर ज्योतिष का आधार स्तंभ लें तो वो भी इसके साथ ऐसा ही होगा महाराज, कि ज्योतिष के आधार के ऊपर ही जो है वर्ण का विश्लेषण ये है या वो है वो करना मतलब कितना प्रतिशत सही है और कितना प्रतिशत सही नहीं है, या इसमें भी वही चीज आ जाएगी?
नहीं, ज्योतिष शास्त्र में क्या बताता है जो वस्तु स्थिति है वही बताता है, ऐसे नहीं कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आपका कोई नया कोई भविष्य बनेगा, जो आपके भाग्य में लिखा है, जो आपके कर्म के अनुसार आपको मिलना है, बस उसका एक संकेत मिलेगा आपको कि आपके जीवन में ऐसे चल रहा है, साढ़े साथी हो रहा है, ये शनि दशा है और ये है वो है जो भी है, इसकी वजह से आपको जीवन में इस तरह का प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, बस यही है। ताकि आप सावधान रहें, आप जान लें कि ऐसे है तो मुझे क्या करना चाहिए, निवारण कैसे करना चाहिए इन चीज़ों का। ठीक है, स्पष्ट हो गई बात? हाँ नहीं, बोलो बोलो, स्पष्ट नहीं है तो बताओ
महाराज। मतलब ये है कि उससे वर्ण का जो ये है आइडेंटिफिकेशन, उसको उसका रोल कितना प्ले होता है वो मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब
ज्योतिष और वर्ण, वर्ण का निर्धारण, ज्योतिष में भी व्यक्ति का स्वभाव होता है ना। जैसे भगवत गीता में 16वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं दैवी गुण और असुरी गुणों के बारे में, अभिजातस्य भारत, कि हे भारतवंशी तुम दिव्य गुणों से ही तुमने जन्म लिया है। तो वर्ण जो है किस आधार पे निर्धारित किए जाते हैं?
गुणों
के ऊपर। हाँ, जो सात्विक है वो ब्राह्मण है, जो राजसिक है वो, या ऐसे कहें जो ब्राह्मण होते हैं वो सात्विक होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं वो रजोगुण में होते हैं, जो वैश्य होते हैं वो रजो और तमो के मिश्रण में होते हैं, जो शूद्र होते हैं वो तमो के तमोगुण में होते हैं, के प्रभाव में होते हैं। तो इसलिए गुणों का और वर्ण वर्ण का संभव समा ये संबंध होता है। इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र से भी अंदाज लगाया जा सकता है। परंतु जब गुरुकुल पद्धति में बच्चों के वर्णों का निर्धारण किया जाता था तो केवल ज्योतिष शास्त्र के आधार पर नहीं किया जाता था, गुरु भी होते थे, माता पिता भी होते थे और सब लोग देखते थे ना बच्चे को अनेक वर्षों से, फिर पता चलता था कि इसका गुण क्या है, इसका वर्ण कौन सा है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, फिर उस हिसाब से उसको आगे प्रशिक्षण या शिक्षण के लिए भेजते थे। किसी के अंदर बच्चे के अंदर ब्राह्मण के गुण दिखाई पड़ते थे ज़्यादा स्पष्ट रूप से, तो उसको उस प्रकार के कार्य में आगे भेजते थे, कोई क्षत्रिय है तो उसको इस तरह से। आजकल वर्ण प्रणाली बहुत कठिन है करना, फिर भी शास्त्रों में लिखा है ऐसे, अब प्रभुपाद चाहते थे तो धीरे धीरे हो जाएगा भी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे। तो आज हमारे बीच में वृंदावन से हरिकेश्वर प्रभु आए हैं, तो अभी कल तक रहेंगे यहाँ पे, एक गुरुकुल की सेवा शुरू करने, गुरुकुल का प्रकल्प ऐसे करने का विचार चल रहा है, तो इसमें हरिकेश्वर प्रभु का प्रधान सेवा होगा। तो ये सब चर्चाएं अभी चल रही है। हरे कृष्णा।